अभी आस्था इसी बारे में सोच रही थी कि आखिरकार मुझे कौन देख रहा है। उसने चारों तरफ एक बार फिर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि अचानक से अरमान धीरे से आस्था के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे मनाने की कोशिश करने लगा। अरमान को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो जो आज अपनी बीवी के सामने झुका हुआ है, असल में वो कितना खतरनाक इंसान है। आस्था को अरमान पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, लेकिन उसे एक बार फिर बड़ी ही स्ट्रांग फीलिंग आने लगी कि मानो कोई उसे बेतहाशा घूर रहा है। लेकिन अरमान अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे हल्के से अपनी बाहों में भर लिया। उसने आस्था की कमर थामकर उसे अपने करीब खींच लिया और सिर उसके सीने से लगा लिया। आस्था अब सब भूल गई, कौन उसे देख रहा है कौन नहीं, और आस्था का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अरमान से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पहली बार अरमान ने उसे इस अंदाज में यूं थाम लिया था। आस्था ने हल्का सा झुककर अरमान के बालों में हाथ फेरा और धीमी आवाज में बोली, अरमान जी, आपको इतने इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, हमने आपको माफ कर दिया, प्लीज उठ जाइए ना, अच्छा नहीं लग रहा है आपको इस तरह नीचे बैठे देखना। लेकिन अरमान तो जैसे पूरी तरह से आस्था में खो चुका था। उसने उसे और कसकर अपने करीब कर लिया, जैसे एक पल के लिए भी उसे छोड़ना नहीं चाहता हो। आस्था उसकी इस हरकत से और ज्यादा घबरा गई, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही सुकून भी था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होंठों से हल्की सी सांस निकली, जैसे वो उस पल को महसूस कर रही हो। अरमान ने भी अपने एहसासों को संभालते हुए बस उसके माथे और गालों को बहुत ही नरमी से छू लिया। उसके करीब रहकर उसने अपनी भावनाओं को जाहिर किया, लेकिन हदों को पार किए बिना। आस्था पूरी तरह से उस पल में खो गई थी। उसके सोचने समझने की ताकत जैसे कुछ देर के लिए थम गई थी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि दूर कहीं अंधेरे में दो गहरी काली आंखें उन्हें लगातार देख रही थीं। वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट ठाकुर था, जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। दिन में उसने सिंघानिया मेंशन के आसपास अलग अलग भेष में अपने लोगों को फैला रखा था, लेकिन रात में वो खुद चैन से नहीं बैठ पाता था। जैसे ही आस्था बालकनी में आई, उसने दूरबीन से उन्हें देखना शुरू कर दिया। भले ही वो काफी दूर था, लेकिन उसकी नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थीं। आस्था और अरमान को एक दूसरे में खोया हुआ देखकर और आस्था के चेहरे पर उस मासूम खुशी और अरमान के प्यार में मदहोश देखकर सम्राट का खून खौल उठा। उसने गुस्से में दूरबीन को कसकर पकड़ लिया और दांत भींचते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि उसकी हल्की गूंज आस्था के कानों तक भी पहुंची। आस्था ने अचानक अपनी आंखें खोल दी, लेकिन अरमान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी उसी में खोया हुआ था और लगातार उसे चूमे जा रहा था। कुछ ही पल बाद अरमान ने आस्था को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से अंदर कमरे में ले गया। वो उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके पास बैठ गया और उसके हाथों को थामे हुए बस उसे देखता रहा। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार साफ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सम्राट गुस्से से तिलमिला उठा था। पहली बार मुझे कोई लड़की पसंद आई है, और वो भी मुझे मेरे सबसे बड़े दुश्मन के साथ देखनी पड़ रही है। उसकी आंखों में पागलपन साफ छलक रहा था। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे आस्था चाहिए, हर हाल में चाहिए। उसने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। अरमान सिंघानिया से बदला लेना अलग बात है, लेकिन अब मुझे सिर्फ उसकी बीवी से मतलब है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। मैं देखना चाहता हूं, जब वो मेरे सामने होगी तो क्या वो ऐसे ही मुस्कुराएगी और मेरे प्यार करने पर इसी तरह मदहोश होगी। वहीं दूसरी ओर राजवीर जिंदल भी इस वक्त पूरी तरह पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था। उसने कमरे में प्रियंका के कपड़े बिखेर रखे थे और उन्हीं के बीच लेटा हुआ था, जैसे वो उसी के करीब हो। उसकी हालत बेहद अजीब और डरावनी लग रही थी। वो बड़बड़ाते हुए कह रहा था, प्रियंका, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना चाहिए था, और आस्था, उसे हमारे बीच नहीं आना चाहिए था। उसकी आंखों में जुनून और पागलपन साफ दिखाई दे रहा था, जैसे आने वाला समय और भी खतरनाक होने वाला हो, और ऊपर से प्रियंका का जवान शरीर उसे अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित किए हुए था। उसके बिना एक पल भी उसे चैन नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रियंका के साथ वो दिन रात का फर्क नहीं देखता था। जब उसका दिल करता वो उसके करीब जाने की कोशिश करता था। अब तो उसे उसकी आदत सी हो चुकी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रियंका इस तरह उससे दूर चली जाएगी। अचानक ही राजवीर आंखें बंद किए अपनी और अपनी बीवी की पहली मुलाकात को याद करने लगा। जब उसकी अपनी बीवी नैना से पहली बार मुलाकात हुई थी, उस वक्त राजवीर एक काफी फेमस डॉक्टर था। उसे कई अवार्ड मिल चुके थे। अपनी थोड़ी बहुत नकारात्मक छवि को छुपाने के लिए उसने समाज सेवा करने का फैसला लिया था। शहर में एक बहुत बड़ा आश्रम था जिसे माथुर परिवार चलाता था। उसी परिवार की बेटी थी नैना माथुर, खूबसूरत, सादगी से भरी और जिसने अपनी पूरी जिंदगी गरीब और अनाथ लोगों के नाम कर दी थी। वो उस परिवार की वारिस थी और उसी के नाम से पूरा आश्रम चलता था। राजवीर को चैरिटी करने के इरादे से वहां पहुंचा था। उसे हाल ही में एक बड़ा अवार्ड मिला था और वो अपनी खुशी बच्चों के साथ बांटना चाहता था, या यूं कहें कि अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए ये सब कर रहा था। इसलिए वो सीधे उस आश्रम में पहुंच गया। उस समय आश्रम में छोटा सा जश्न चल रहा था क्योंकि उस दिन नैना का जन्मदिन था। वो अपना जन्मदिन हमेशा गरीब और अनाथ बच्चों के साथ ही मनाती थी। पूरे आश्रम को छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों से सजाया था और सभी के बीच नैना केक काट रही थी। जैसे ही राजवीर ने वहां एंट्री ली, उसकी नजर नैना पर पड़ी। वो बच्चों के पीछे भाग रही थी, हंस रही थी। उसने सफेद रंग की सादी ड्रेस पहनी हुई थी, बाल खुले थे, चेहरे पर हल्की सी लटे बिखरी हुई थी और माथे पर एक छोटी सी बिंदी थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। बच्चों के साथ खेलते हुए उसकी मासूमियत और सहजता ने राजवीर को पहली ही नजर में बेबस कर दिया। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की को अहमियत नहीं दी थी क्योंकि उसका मानना था कि औरत सिर्फ कमजोरी होती है। वो हमेशा सोचता था कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इन सबसे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन पहली बार नैना को देखने के बाद उसके सारे उसूल हिल गए थे। उसकी नजरें बार बार नैना पर ही टिक जा रही थी। राजवीर अब एक अवार्ड विनर, डैशिंग और हैंडसम डॉक्टर था, इसलिए मीडिया के कुछ लोग भी उसके साथ मौजूद थे। वो गाड़ी के पास खड़ा होकर बस नैना को एकटक देखे जा रहा था, जैसे हर एक पल को अपने अंदर कैद कर लेना चाहता हो। थोड़ी देर बाद आश्रम के कुछ कर्मचारी वहां आए और राजवीर का स्वागत करते हुए उसे अंदर चलने के लिए कहने लगे, लेकिन राजवीर ने मना कर दिया। उसकी नजरें पूरी तरह नैना पर ही टिकी थी। तभी आश्रम के एक जिम्मेदार व्यक्ति नैना के पास गए और बोले, हमारे आश्रम में आज एक बहुत बड़े डॉक्टर आए हैं लेकिन वो अंदर नहीं आ रहे, आप ही उनसे बात कीजिए मैडम। ये सुनकर नैना तुरंत राजवीर की ओर बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, सच में हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे छोटे से आश्रम में आए हैं। लेकिन राजवीर की नजरें उसकी बातों पर नहीं बल्कि उसके चेहरे और उसके हाव भाव और उसके शरीर के उभरे हुए अंगों पर ही अटक गई थी। वो पूरी तरह खो चुका था। नैना लगातार उससे बात करती रही लेकिन राजवीर जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। जब नैना को कोई जवाब नहीं मिला तो उसे अजीब लगा। उसने ध्यान से राजवीर की आंखों की दिशा देखी और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि राजवीर किस नजर से उसे देख रहा है, उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तुरंत अपना दुपट्टा संभाला और बिना एक पल गंवाए राजवीर के गाल पर जोरदार थप्पड़ चढ़ दिया।
वहां मौजूद सभी लोग, मीडिया और स्टाफ ये देखकर हैरान रह गए। सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई इस तरह राजवीर जैसे बड़े आदमी को थप्पड़ मार देगा। और तभी राजवीर अचानक वर्तमान में लौट आया। वो बेड पर बैठे हुए प्रियंका के कपड़ों को देख रहा था, फिर अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए धीमे से बोला, तुम्हारा वो पहला थप्पड़ आज भी याद है मुझे मेरी प्यारी बीवी, और मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा, आखिर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी ओर संजना इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। कमरे में हल्की सी अंधेरा छाया हुआ था और वो अकेले बैठी कुछ गहरे ख्यालों में डूबी हुई थी। वो इधर उधर थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि सम्राट ने उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से अभी चल फिर नहीं पा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक संतोष था कि कम से कम वो सनकी पागल अब आस्था के पीछे पड़ गया है, क्योंकि वो जानती थी अगर वो आस्था के पीछे पड़ा है तो आस्था को अगवा जरूर करेगा, और अगर आस्था की इज्जत एक बार चली जाती है तब अरमान सिंघानिया का आस्था से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आखिरकार ये बात संजना अच्छी तरह से जानती थी कि आस्था कितनी ज्यादा आदर्शोमयी लड़की है, और अगर उसका पतन होता है, अगर उसे कोई और मर्द छुएगा तो वो खुद ही अपनी जान दे देगी, और आस्था की दर्दनाक मौत देखने के लिए ही तो संजना जिंदा थी। कहीं ना कहीं संजना पूरी तरह से अब तैयार थी आस्था को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने के लिए, क्योंकि वो इतना तो समझ चुकी थी कि अरमान सिंघानिया शायद उसकी पकड़ से दूर हो चुका था, लेकिन अब तो उसने अपनी इज्जत तक गंवा दी थी सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश के साथ कि आस्था की भी जान जाए, और उसे पूरी उम्मीद थी कि सम्राट आस्था की जान लेकर ही रहेगा। उसे बस बेसब्री से उसी का इंतजार करना था। कहीं ना कहीं संजना केवल थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए उठते और फिर कमरे में लेट जाती। उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि ज्यादा देर खड़ी रह सके। जब तक उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा वो इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। उसने खुद को पूरी तरह से कमरे में कैद कर लिया था। फिलहाल सुबह हो चुकी थी। आस्था ने देखा कि अरमान उसके बेहद करीब और सुकून से सोया हुआ था। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे, जो आस्था को बहुत प्यारे लग रहे थे। और जिस तरीके से अरमान ने उसके साथ व्यवहार किया था, उससे माफी मांगी थी, उससे उसे उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। वो धीरे से आगे बढ़ी और अरमान के माथे को चूम लिया और हल्के कदमों से उठने लगी। लेकिन अरमान ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और आस्था को अपनी ओर खींच लिया। एक बार फिर आस्था अरमान से आकर चिपक गई। वहीं आस्था शर्माते हुए बोली, छोड़ दीजिए, वैसे भी दिन हो चुका है और आज के सारे काम भी हैं, हमें उससे पहले ही तैयार होना होगा। ये सुनकर अरमान ने बदले में बस उसे और करीब खींच लिया। उसके माथे को फिर से चूमते हुए बोला, आस्था, आई लव यू। जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था मुस्कुराते हुए उससे अलग होने लगी और बोली, अब तो हमें छोड़ दीजिए, कोई आ जाएगा प्लीज। तब आस्था की ये बात सुनते ही अरमान ने अपने होठों पर हल्की मुस्कान सजाई और बोला, आखिर कब खत्म होगा आपका ये कोई आ जाएगा वाला सीन? शायद आप भूल रही हैं कि आप अरमान सिंघानिया की बीवी हैं और इस सिंघानिया मेंशन की मालकिन भी, तो आपको किसी के आने या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही आस्था ने शर्माते हुए अपना चेहरा अरमान के सीने में छुपा लिया और धीमी आवाज में बोली, हमें शर्म आ रही है बिना कपड़ों के आपके सामने, प्लीज हमें जाने दीजिए।